నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే హిందీ భక్తిర్భవతి నైష్టికి. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద చే అధ్యాయ 10 శ్లోక సంఖ్య 12 చే 10-12. ధన్యవాద్. యథాక్షాసు మనోబుద్ధిస్ తత్వదిగ్ ధ్వస్తబంధనః ఆస్తితః పరమం యోగం నదేహం బుభుధే గతం. యథాక్షాసు మనోబుద్ధిస్ తత్వదృగ్ ధ్వస్తబంధనః ఆస్తితః పరమం యోగం నదేహం బుబుద్ధే గతం. యథాక్షాసు మనోబుద్ధిస్ తత్వదృగ్ ధ్వస్తబంధనః ఆస్తితః పరమం యోగం నదేహం బుభుధే గతం. యథాక్షాసు మనోబుద్ధిస్ తత్వదృగ్ ధ్వస్తబంధనః ఆస్తితః పరమం యోగం నదేహం బుబుధే గతం. యథాక్షాసు మనోబుద్ధిస్ తత్వదృగ్ ధ్వస్తబంధనః ఆస్తితః పరమం యోగం నదేహం బుబుధే గతం. మాతాం, కోయి కర్నా హై, కోయి బోల్నా హై? నహీ. పదపాతః యత్ వశ్ మే అక్ష ఇంద్రియా అసు ప్రాణవాయు మనః మన్ బుద్ధిః బుద్ధి తత్వదృక్. తత్వం ఏవం భౌతిక్ తథా ఆత్మశక్తియోం కా జ్ఞాతా. ధ్వస్తబంధనః బంధన్ సే ముక్త్. ఆస్తితః అస్తిత్ హోకర్ పరమం పరం యోగం ధ్యాన్ సమాధి కో న నహి. దేహం భౌతిక్ శరీర్ కో బుభుధే దేఖా గతం నిక్లా హువా. అనువాద తాత్పర్య శిల ప్రభుపాజీ కే ద్వారా. దదీచి ముని నే అప్ని ఇంద్రియో ప్రాణ మన్ తథా బుద్ధి కో సంయమిత్ కియా ఔర్ సమాధి మే ఖో గయే. इस प्रकार उनके समस्त बंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तात्पर्य, भगवद गीता 8:5 में श्री कृष्ण का कथन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। हो गया। जो कोई अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग सकता है वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह मृत्यु के पूर्व ही अभ्यास करना चाहिए, किंतु पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है, उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो गया है, हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक को चला जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति माम एति, आत्मा पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वरन वह भगवान के धाम चला जाता है। यह भक्ति योग ही परम योग विधि है। जैसे कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 6:47 में कहा है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममाई भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवा करता है वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। भक्ति योगी श्री कृष्ण का चिंतन करता है, अतः मृत्यु के समय वह अपने आप को मृत्यु की वेदना सहे बिना कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सकता है। हरे कृष्ण। दधीची का कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है वेदों में और भागवत में भी। इसका आधार कथा है चित्रकेतु राजा, और चित्रकेतु राजा शपित हो गया दुर्गा देवी के द्वारा। दुर्गा देवी चित्रकेतु को असुर योनि में जन्म लेने के लिए शाप दिया था, ऐसे नहीं बैठना। और चित्रकेतु वृत्र नामना, वृत्र एक दृष्टि से ब्राह्मण एक ऋषि के पुत्र थे, लेकिन इंद्र का शत्रु होकर इंद्र उनको परास्त करने के लिए वज्र का निर्माण करना जरूर पड़ा। वृत्र इतना बलशाली राक्षस हो गया कि उनका संहार करने के लिए अद्भुत शक्ति का आवश्यकता हो चुके थे। अद्भुत शक्ति, राक्षसों को मरना ये भगवान का काम है। हमारे सामने राम भगवान और रावण के युद्ध का चित्रकला, नरसिंह अवतार नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को सत्यनाश किया, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का रक्षण करना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति, कृति शब्द का अर्थ है कुछ काम किया, क्री कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार के प्रवृत्ति होते हैं। दुष्कृति न, जिन्होंने कुछ कुकर्म किया, पापाचार, सुबह कोई मेरे को कह रहे थे कि एक भक्त, एक गुरु भाई, हिंदुस्तानी, विदेशी गुरु भाई नहीं, हिंदुस्तानी गुरु भाई कम है, प्रभुपाद से दीक्षा लिया, लेकिन यही गुरु भाई जुआ जुगाड़ खेलते हैं और उसके सारे धन नष्ट हो गया। जुआ जुगाड़ है दुष्कृति, कुकर्म। यही कुकर्म का पोषण और पुष्टि कौन कर रहे हैं? सरकार है कि नहीं? सरकार। कोई कह सकते यही गलत बात है, सरकार कहां लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं? जुआ जुगाड़ लॉटरी है ना, हाँ, सुपर लॉटरी हिंदुस्तान में चलते हैं और पूरा दुनिया में लोगों के धोखा इस प्रकार से हो रहा है। दुष्कृति, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, जो कुकर्म करने वाले हैं भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते हैं। मूढ़ा, मूढ़ा का पर्यायवाची हिंदी बात, हिंदी शब्द क्या है आपको मालूम है? मूर्ख है, सही बात है, लेकिन एक और अनुवाद होते हैं, हा? गद्धा, गद्धा, गद्धा बार, ये प्राचीन याद नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, कोई एक संस्कृत वाक्य है कि चंदन गद्धे के पीठ पर रह रहे हैं लेकिन उसका सुगंध का आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं, केवल उसका भार उसको पीड़ित कर रहे हैं। गद्धा, मानव रूपी गद्धा, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, मानव रूपी पशु भगवान के शरण नहीं ग्रहण करते हैं और कुकर्म करते हैं। दुष्कृति न, तो ये वृत्र राजा चित्रकेतु एक दृष्टि से सज्जन थे, श्रीमद् भागवत के अनुसार न केवल सज्जन लेकिन वो भगवान के भक्त था, और उस भक्त ने देवी के शाप के अनुसार असुर योनि में प्रवेश करना पड़ा। तो हम इसमें से समझ सकते हैं कि हरेक आत्मा भगवान के अंश, ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सब शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन संयोगों के अनुसार दुष्ट असुर योनि में जन्म लेना पड़ते हैं और दुष्ट बन जाते हैं। आसुरिम योनिम आपन्ना मूढ़ा, जन्मनी जन्मनी, जो गद्धा की तरह मनुष्य है उसको असुर योनि में प्रवेश करके पापाचार करते रहेंगे जन्म जन्म जन्मांतर। लगभग वर्तमान काल में मानव समाज असुर प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। दुनिया भर के निरीक्षण अगर करेंगे, भारत के अंदर अगर निरीक्षण करेंगे, तो हम देख सकेंगे कि लोग पापाचार में प्रवृत्त है। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। मांसाहार, व्याभिचार, नशा का दुरुपयोग, नशा का मादरक पदार्थों का इस्तेमाल प्रयोग और जुआ जुगाड़, ये हर रोज का प्रवृत्ति है दुनिया भर। लगभग सब दुष्ट हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार दुष्ट मानव समाज का संहार करने के लिए कल्कि अवतार आने वाले हैं, लेकिन 4,00,000 साल के बाद आएंगे। तो कभी कभी भगवान आके दुष्टों को मारते हैं और कभी कभी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। ये शक्ति प्रदान करने का कथा है जहां दधीची का हदिया से वज्राष्ट्र उस अस्त्र का निर्माण हो गया, जिस प्रकार से इंद्र उस असुर वृत्र का विनाश कर सके। भूतकाल की कथा है। कभी कभी शिवजी महाराज जैसे हैं, कभी कभी जैसे युधिष्ठिर राजा। ये प्राचीन वैदिक संस्कृति में राजा भगवान के प्रतिनिधि है, दंड देने के लिए लोगों का, मानव समाज का नियंत्रण करने के लिए राजा और दंड जरूरी है। प्रभुपाद जी महाराज जब चले गए थे तो नया सरकार का आरंभ हो गया भारत में, मोरारजी सरकार। अभी नया सरकार है मोदी सरकार। मोरारजी गांधी जी का अनुयायी, अहिंसावादी, लेकिन जब उसी काल में कुछ अलीगढ़ में कुछ तूफान निकला तो मोरारजी अहिंसावादी ने कहा कि हम किसी न किसी तरह ये हिंसा को रोक देंगे। तो हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का प्रयोग ही करना है, और कोई उपाय नहीं है। हिंसक लोगों के सामने खड़े रहो और हाथ उठो, मरण ही शरण, मरणम ही शरणम। जो वास्तविक हिंसावादी है अहिंसा उनका रोक टोक नहीं करते हैं। कहते हैं गांधी जी ने आजादी लाया भारत में, प्रभुपाद जी महाराज कहते थे ये नहीं, नेताजी सुभाष बोस ने, नेताजी सुभाष बोस के डर से आजादी आ गया भारत में। आप लोग के प्रभुपाद का कथन सुना है कि नहीं मुझे मालूम है। राजा क्षत्रिय वर्ग, कल हमारे गोष्ठी में भी ये विचार, डॉक्टर साहब माधवानंद करके है, अपरिचित है, मैंने उनको पहले बार देखा होगा लगते हैं, आप लोग मेरे को पहले बार भी देख रहे हैं लगते हैं। उन्होंने हमारे गोष्ठी में प्रतिपादन किया कि क्षत्रिय दल का निर्माण करना आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने भी यही उपदेश दिया, वर्णाश्रम धर्म का पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान। जब वर्णाश्रम धर्म का बात करते हैं तो न केवल ब्राह्मणों की बात करते हैं, क्षत्रिय आजकल वैश्य तो है ही। कैपिटलिज्म, अर्थवाद दुनिया भर चलते हैं, मार्क्सवाद के नाम से अर्थवाद का शासन चीन में चलते हैं। लेकिन डर है दुनिया में, दुष्टों से, हिंसावादियों से डर है। तो ये हिंसावादियों रोकने के लिए हम सब खड़े होकर हाथ नहीं उठा सकते, वो नहीं रोकने वाले हैं। हनुमान जी को जब युद्ध में था तो उसका ये क्या बोलते हैं, बदांजलि मुद्रा, हनुमान बदांजलि मुद्रा से प्रसिद्ध है, राम भगवान के सामने, लेकिन असुरों के सामने मारो उनको सब। हाँ, हनुमान का अर्थ क्या है, महावीर, महावीर। वीरों का निर्माण कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा जरूर है। द्रोणाचार्य गुरु पांडवों का, कौरवों का, उनका गांव है ना गुरु ग्रामा, गुड़गांव, आपने गुड़गांव का नाम सुना होगा, दिल्ली के बाजू में दुबई जैसे हो गया, अभी बड़ी बड़ी इमारत का निर्माण। द्रोणाचार्य वहां रहकर युद्ध कला का शिक्षण अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और दुर्योधन और उनके 100 भाइयों को दे रहे थे। ये युद्ध का कथा है, श्रीमद् भागवत में कितना युद्ध का कथा है। दिल्ली में बैठा था, वहां भी ध्रुव, भक्त ध्रुव का कथा का समाप्ति श्लोक यही ध्रुव का आख्यान है। हम सब भक्त ध्रुवों का याद जब करते हैं तो एक छोटा सा नन्हे सा बालक जो जंगल में प्रवेश किया और एक पांव में खड़े होकर खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके करके विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गया। लेकिन बाद में कथा और आगे रहा और वो कथा है कि राजा बन गया, गृहस्थ बन गया और युद्ध कला में निपुण हो चुके थे। भले नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने उनका राक्षस पीतक का विनाश किया, प्रहलाद भी ऐसे राजा बन चुके थे, बलि राजा। बलि राजा प्रहलाद का पुत्र देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं के साथ, तभी भी उनको हम पूजते हैं। युद्ध कला जरूरी है मानव समाज में, ये भागवत का एक शिक्षण है। लेकिन जैसे गीता में कृष्णा अर्जुन को बोला युद्धस्व मद अनुस्मरण, युद्ध करो मेरा स्मरण करके करके। भक्त लोग जब युद्ध करते हैं तो भगवान का याद करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए हम युद्ध नहीं करेंगे। जब जरूरत है तो युद्ध करना पड़ेगा, जब आवश्यकता है। भक्त लोग छूट बैठ के नहीं मेरे को मार डालो, मैं अहिंसावादी हूं, ऐसे भावना नहीं रखते हैं। हनुमान, प्रहलाद, बलि और यहां इंद्र, इन सब का स्मरण, इंद्र देवता का राजा, देवता देवेंद्र, देवेंद्र देवताओं का मुख्य राजा और युद्ध कला में निपुण। कार्तिकेय शंकर भगवान के पुत्र, स्कंद देव सेनापति, उनका दूसरा नाम है देव सेनापति, देवसेना, कभी कभी देवसेना संक्षिप्त में कहते हैं। युद्ध कला में निपुण। गीता का आरंभ में क्या श्लोक है याद नहीं आ रहा है? नहीं 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 नहीं, आगे सर्वे युद्ध विशारदाः, ऐसे शब्द का प्रयोग है गीता के पहला श्लोक की बात नहीं है, पहले 10 श्लोकों में से बीच में सर्वे युद्ध विशारदाः, सब योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं। दुर्योधन, दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करके ही मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए जीवन प्राण त्याग करना सब तैयार है। ये इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट अर्थ है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, स्पष्ट अर्थ है। सर्वे युद्ध विशारदाः, ये सब राजा जो खड़े हैं युद्ध करने में निपुण है। बलराम, भगवान बलराम अंश अवतार, युद्ध का प्रिय, उनका बलराम का यही काम था, क्षमा करे, यही काम था युद्ध करना बलराम, लेकिन पक्षपात लेने में ही महाभारत के युद्ध के काल में पक्षपात लेना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक तीर्थ यात्रा में प्रस्थान किया। लेकिन तीर्थ यात्रा करके करके कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि आया, और उसी काल में दुर्योधन और भीम के बीच में गधा युद्ध चलता था, ये महाभारत का एक कथा है। तो बलराम दुर्योधन के पक्ष में थे, दुर्योधन उनके प्रिय थे, ये भी समझने में मुश्किल है को। दुर्योधन दुष्ट था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम, जैसे प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे मालूम है धर्म क्या है, मैं उसको पालन नहीं कर सकता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम, अधर्म क्या है मुझे मालूम है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसे ही व्यक्तित्व दिखते हैं महाभारत में। दुष्ट भी भगवान के भक्त है, और भगवान उन दुष्टों पर दया रखते हैं। शंकर भगवान खास आशुतोष, शीघ्र ही शंकर भगवान ये दुष्टों के ऊपर भी तुष्ट हो जाते हैं। भस्मासुर बोलते हैं ना, क्या नाम था दूसरे, वृक्कासुर भस्मासुर, तो अपना शरीर को समर्पण करने लगा, खात खात के शंकर भगवान प्रकट हो गया। तो क्या चाहिए, जिनके सिर पर में मेरा हाथ का स्पर्श होगा तो भस्मा हो जाएगा। तथास्तु, फिर उन पर शंकर पर स्पर्श करना चालू, ऐसे ही दुष्ट लोगों के ऊपर भगवान कभी संतुष्ट हो जाते हैं। बाद में भगवान विष्णु ने उनको बचाना पड़ा, शंकर भगवान को। तो मृत्यु ही आज के तात्पर्य का विषय है, मरने से क्यों डरना है। लेकिन हम सब डरते हैं, डरते हैं। योद्धा को नहीं डरना चाहिए, युद्धे चपी अपलायनम, ये भी गीता में है। युद्ध में क्षत्रिय का वर्णन जब होते हैं गीता में, तो युद्धे चापी अपलायनम, युद्ध से भाग नहीं जाते हैं। युद्ध जब होते हैं तो लड़ते हैं डरने के बिना, लेकिन सब मृत्यु से डरते हैं, रहस्य है इसलिए। लेकिन रहस्य नहीं है, गीता कहते हैं अशोचान अन्वशोचस्त्वाम प्राज्ञाभादांश्च भाषसे कथासुन अगथासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो बुद्धिमान है मृत्यु देखने से विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं होते हैं, घबराहट नहीं होते हैं, वो समझते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं आत्मा शरीर से चले गया, और शरीर खाली पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल भूमि, पृथ्वी भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच पदार्थों का संकलन है, और ये पांच पदार्थ उन पांच पदार्थों में ही मिल जाते हैं, और आत्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म केशाग्र शतभागस्य शतभागस्य, जो हम देख नहीं सकते, यंत्र के द्वारा देख नहीं सकते, शरीर से छूट जाते हैं। शरीर के अंदर कैसे रह रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत है। दूसरे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्य आश्चर्य की बात है ही, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर चले जाते हैं। और वैज्ञानिक, आधुनिक कालीन वैज्ञानिक जिनके प्रयोगशाला में कोटि कोटि रुपया का खर्चा हो रहा है जीवन क्या है समझने के लिए, आज तक समझ नहीं सका, समझते नहीं जीवन क्या है। बड़ी बड़ी बात करते हैं हम जीवन का निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक स्मशान भूमि समाप्त नहीं हुआ। स्मशान का काम अहन्याहानि भूतानि गच्छन्ति अमालयम्, मरण समाप्त नहीं कर पाया इंजेक्शन देने से। हम सब औषध लेते रहते हैं, कोई आयुर्वेदिक लेते हैं, कोई एलोपैथिक लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा और मृत्यु का रोक टोक आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो यही विद्या राजविद्या राजगुह्यम, ये प्राचीन विद्या गुह्य रहस्य है, क्योंकि कैसे हो रहा है हम देख नहीं सकते, विश्वास ही रखना पड़ते हैं, समझ सकते हैं देख नहीं सकते। और क्या सत्कर्म है क्या कुकर्म है, कौन दुष्ट है कौन सज्जन है, इसी ग्रंथों, इसी भागवत और गीता जैसे ग्रंथों के शिक्षण से न केवल समझने का प्रयास करना है, लेकिन पालन करना। भक्त बन गए दीक्षा लिया और जुआ जुगाड़ खेलते हैं तो ये त्रुटि है। मांसाहार करना भक्त के लिए अनुचित है, सब खा रहे हैं आजकल, इसलिए उनसे दूर रहना बहुत आसान नहीं है। जिन घरों में परंपरा चले आ रहे हैं शाकाहार, वो सब मांसाहारी दिन से दिन बनते जा रहे हैं, और सोच विचार नहीं है कि ये पापाचार है और इस पापाचार का फल भुगतना पड़ेगा भविष्य में, चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए मूढ़ा गधा की तरह रह रहे हैं। आव जानती माम मूढ़ा नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, ये मूढ़ा का शब्द प्रिय शब्द है गीता में, राइट। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा आव जानती माम मूढ़ा, बारंबार मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं, पंडित बनने के लिए उपदेश दे रहे हैं, नानु सोचन्ति पंडिता न तत्र पंडिता समदर्शने, एक और श्लोकों का याद, न तत्र याद नहीं आ रहे हैं, विमोहित नहीं होते हैं पंडित। ये शरीर का परिवर्तन, जन्म मृत्यु, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब द्वंद्वों से ही मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं शीतोष्ण आगमा पाइनो नित्य स्थाम स्थिति क्षस्व भारत नहीं, वहां है उपदेश, लेकिन थे हे कुमारम नहीं नहीं 700 श्लोक है नहीं, विचलित नहीं होते हैं। नहीं 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 आह धीर तत्र नमुह्यति, धन्यवाद। धीर धीर बनना चाहिए, धीर धीर पुरुष। ये काव्य शास्त्र में ये धीर शब्द बहुत प्रिय शब्द है कवि कवि लोगों के, धीर वीर वीर है और धीर है। धीर का अर्थ है आत्मसंयमी, और आत्मसंयमी बनना मुश्किल है। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है। खाने की चीज अपवित्र भोजन नहीं करना, और हम कर रहे हैं। हम खिलाड़े हैं भी, हम खिलाड़े हैं भी। लेकिन केवल फलाहार करना मुश्किल है। फल खाने में पाप नहीं लगते हैं, और जो फलाहारी है वो निष्पाप, निष्पाप समझते हैं। लेकिन ऐसे बन के रहना कठिन है। गीता में भी अनाद भवन्ति भूतानि, सबको अनाज ही खाना है। दुष्ट वस्तु का खाना, दुष्ट अपवित्र वस्तु का खाना और नशा का दुरुपयोग, नशीली पदार्थों का प्रयोग, उसमें से मन दुष्ट हो जाते हैं, दूषित होते हैं। कैसे दुष्ट होते हैं? ये सूर और असुर दोनों भाई हैं, उनके पिता है कि यह माता अलग है। लेकिन असुरों का कुकर्म, असुर कुकर्म करते हैं, मांसाहार और मद्यपान। श्री श्री राधा दास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। दधीची ऋषि थे। ये ऋषि मुनि का वर्णन ऐसे है कि फल और मूल जंगल में रह रहे के आश्रम जंगल में थे, महानगर में रहते नहीं थे लोग, गांव ग्रामीण जीवन, और गांव के बाजू में जंगल भी रहते थे। और तपस्वी ऋषि ये ग्रामीण आश्रम में रह रहे के खाली फल और मूल निष्पाप, निष्पाप पदार्थों का सेवन, पापाचार नहीं करते थे, इसलिए पवित्र मानते थे। इसलिए दधीची का हड्डिया का अद्भुत शक्ति, उसने बहुत तपस्या किया। हमको जंगल में नहीं रहना चाहिए, अच्छा सुविधा नहीं है ना रहने के लिए। ये मूल कैसे मिलेंगे जंगल में? ये आसान नहीं है ना। फल भी जंगल में कहां, बगीचा होते हैं जंगल में, बगीचा जंगल में नहीं होते, लेकिन फल जंगली फल होते हैं। रामायण में वो कौन है, वो शबरी, ये वाल्मीकि में है कि काली तुलसी में है? वाल्मीकि में नहीं है, शबरी है तुलसी में, वाल्मीकि में नहीं है। लेकिन दृष्टांत है कि जो जंगल में रह रहे हैं, किस किस प्रकार के फल खाने से ही जीवन चलाते थे, तो निष्पाप रहते थे, निष्पाप रहते थे। फल मूल खाते थे तो किसी प्राण का हानि नहीं होते थे। अनाज अपने आप मर जाते हैं, अनाज अपने आप मर जाते हैं, इसलिए अनाज खाने से भी। लेकिन अनाज के अंदर, खास करके चावल के अंदर पाप, पकाने वालों का पाप उसमें जाते हैं। गेहूं का मालूम नहीं, वेद में गिनती नहीं होते हैं, अन्न चावल ये भी, इसका भी प्रमाण लाना चाहिए, लेकिन अभी मैं याद नहीं कर सकता हूं। सुना है कि पाप अनाज, खास करके पकाने वालों का पाप, अगर फल खाते हैं तो पकाने का कोई प्रश्न ही नहीं होते। दुष्ट लोगों का जो मनस्थिति तो पके हुए चीज और खास करके अनाज उस पर प्रभाव होते हैं। इसलिए ऋषि मुनि ये प्रवृत्ति में लगते नहीं थे। फल और मूल, गाय का दूध, कामधेनु कौन रखते थे? वशिष्ठ अयोध्या के राज पुरोहित, गाय का दूध बने हुए दही घी ये चीज खाने से पाप नहीं लगते हैं, पापहीन फलाहार। तो मरने के लिए तैयारी अभी हो रहा है जीवन में। अगर हम सदाचार पालन करेंगे, शुद्ध वस्तु का सेवन करेंगे, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, फिर मृत्यु के काल में सदगति होगा। यहां वर्णन है कि इतना पवित्र था दधीची कि उसने कोई दुख नहीं लगा, उसने समझ नहीं सका कि मेरा भौतिक शरीर चले गया, उसका चेतना पवित्र हो चुके थे और हमारे चेतना दके हुए है मन बुद्धि अहंकार के द्वारा। और पंचमहाभूत, लेकिन पंचमहाभूत चलो जाएगा, उसका प्रभाव है मन बुद्धि और अहंकार में, इतना होते हैं बेहोश अचेत, फिर भगवान का स्मरण कैसे होगा? और जो शुद्ध है पवित्र है उनके मन बुद्धि अहंकार ही वो भी चले जाते हैं। यद गतवान न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, वही गति है वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ है कोई चिंता नहीं है, हमारे चिंता चलते हैं उस परिस्थिति, वैकुंठ परिस्थिति पर हम पहुंचा नहीं अभी तक। कब पहुंचेंगे? जब ये सब चिंता छोड़ देते हैं, शत प्रतिशत भगवान के शरणागत। तो हनुमान अगर शरणागति का प्रतीक है तो उसका शरणागति का अर्थ यही नहीं है कि कभी कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी करेंगे। शरणागति का यही अर्थ है कि हर काल में भगवान का भला, भगवान के लिए जो अनुकूल है उस प्रवृत्ति में लगना है। अभी प्रचार प्रवृत्ति का जरूरी है समाज में, क्योंकि विपरीत प्रचार धर्म का प्रचार के अपेक्षा से हजारों हजारों गुना ज्यादा है, हजारों हजारों गुना ज्यादा है। अरे हम लोग भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? कभी कभी मैं भी संकोचित होता हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी महाराज जो धर्म का उपदेश है, कभी कभी हम लोग भी उसके बार प्रचार की बात कर रहा हूं, सोचने की बात है, लेकिन हम यहां कह नहीं सकते क्या है, लोग कहेंगे अपराध है। भगवान का मूर्ति का उपासना का विधान यही तो शिक्षण है, लेकिन प्रचार कैसे करे। प्रभुपाद जी महाराज का इच्छा था कि सब लोग मंदिर में आओ, मंदिर में प्रसाद ग्रहण करो, पुस्तक वितरण प्रभुपाद कहां था, न केवल कहा था लेकिन कितना बल दिया, और उसका कारण यह था कि विपरीत शिक्षण समाज में बहुत है। प्रभुपाद कहते थे कि मार्क्सवाद इस प्रकार से फैल गया पुस्तक वितरण के द्वारा। मार्क्सवाद का विचार पुस्तक वितरण क्या है? विचार का प्रचार है। लोग अगर पढ़ेगा तो ये सनातन धर्म वैष्णव धर्म का विचार क्या है वो हो सीखेगा, और आधुनिक शैक्षणिक विधान में आत्मा क्या है, मानव जीवन क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, है ही नहीं, है ही नहीं। अगर हम ऐसे ही शैक्षणिक विधान के क्षेत्र में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उससे प्रभावित हो जाएंगे। वैदिक शैक्षणिक पद्धति है, हम गुरुग्राम गुरुगांव का याद किया, क्या सीख रहे थे? कृष्ण और बलराम अवंती में गया, गर्ग मुनि ने भेजा सांदीपनी आश्रम, क्या सीख रहे थे हमको जानना चाहिए, और वही विषय का अभ्यास करना चाहिए जो कृष्ण और बलराम, क्योंकि प्रभुपाद जी महाराज ने भी कहा कि कृष्ण और बलराम शिक्षण लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थे, साक्षात भगवान का अवतार, लेकिन दृष्टांत मानव समाज को दिखलाना था कि शैक्षणिक विधान क्या है। उस शैक्षणिक विधान में भगवान साक्षात जंगल में भ्रमण करना पड़ा, लकड़ी एक हद सब लोग की कहानी जानते हैं, सब लोग जानते थे अभी आधुनिक काल में, पहले ये बहुत प्रसिद्ध कथा था कृष्ण और सुदामा। अभी कौन से शैक्षणिक संस्था में बालकों लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में घूमते हैं, आपने देखा सुना नहीं? बंद हो गया, कृष्ण भगवान किया, अभी करना जरूरत नहीं है। फिर कृष्ण भगवान उसी दृष्टांत को क्यों दिखलाया, सोचने की बात है। क्षत्रिय का युद्ध का कला का अभ्यास, धनुष बाण का अभ्यास, एकलव्य का अयोग्यता, ये भी एक कहानी है महाभारत में, कौन योग्य है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई कोई चीज सीखने के लिए। आधुनिक शैक्षणिक में भी ये है ना, फेल हो गया, आत्महत्या भी कर रहे हैं बिचारा लोग, आत्महत्या पापाचार है, वो नहीं समझते। हरे कृष्ण, दधीची का बड़ी रुचिकर कथा है, अद्भुत है, कोई नहीं कर सकते हैं, अपना देह का समर्पण अस्त्र बनने के लिए कौन करेंगे, चलो मेरा अस्थियां ले जाओ अस्त्र बनने के लिए, अद्भुत कथा है, अति अद्भुत, अद्भुत नहीं अति अद्भुत है। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न? वदन्तु कथन्तु।
हरे कृष्ण। बासुदेव प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा रहा, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, लेकिन प्रश्न यह है कि हम लोग इस संस्था में आए, हम लोग घर द्वार माँ बाप सारा फैमिली सब कुछ छोड़ के आ गए, वी आर इन द पाथ ऑफ डिटैचमेंट, लेकिन पाथ ऑफ डिटैचमेंट में आने के बाद आप कह रहे हैं कि रण क्षेत्र में हम लोग को जाने के लिए जरा
नहीं, हम लोग अगर ऐसे अवस्था होगा तो हम लोगों को भी जाना पड़ेगा, लेकिन कोई वर्ग होना चाहिए ना, रक्षा बल है, सेना तो है इस देश का, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग सोचना चाहिए कि उनका आवश्यकता क्या है, ये भी एक बात है ना। वो आधुनिक सैनिक व्यवस्था में धर्म नहीं है, ये भी दुख की बात है। धर्म मंदिर मस्जिद रखते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षण, नैतिक शिक्षण देते हैं कि नहीं भी मालूम नहीं, धार्मिक शिक्षण नहीं देते हैं, वो पक्के हैं।
पुराने जमाने में जितने राजा थे वो लोग परम भक्त थे, मोस्ट ऑफ देम, इसलिए उनको राजा ऋषि कहला जाता है, राजा और ऋषि।
वेद अध्ययन करते थे, वैदिक शैक्षणिक पद्धति जो कृष्ण और बलराम और सुदामा ने व्यतीत किया, पढ़ाई पाठ्यक्रम जो सांदीपनि ने उनको सिखाया, तो ये वैदिक संस्कृति के काल में व्यापक थे। अभी खत्म हो गया, खत्म हो गया का मतलब है जरसा चलते हैं, जरसा।
मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि फिर भी राजऋषि होते हुए भी वो भी रण क्षेत्र में जाके युद्ध करते थे, तो आप क्या कहते हैं, हम लोग भक्ति करते हुए फिर भी कोई बाधा विघ्न आए हम भी रण क्षेत्र में जाएं, आप यही कहना चाहते हैं हमें?
नहीं, हम लोग वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो शिक्षण है, वर्णाश्रम धर्म समाज का विभाजन, तो उसमें क्षत्रिय वर्ग रहेगा, उस विचार को पुष्टि देना है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, विचार को। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन युद्ध कला में निपुण थे, कृपाचार्य। ब्राह्मण का काम है वैदिक ग्रंथों को कंठस्थ करना, वैदिक ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को प्रदान करना, लेकिन कोई कोई ब्राह्मण धनुर्वेद में निपुण होगा, परशुराम। ये तीन दृष्टांत है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, परशुराम। सैकड़ों सैकड़ों क्षत्रिय थे, कृष्ण भगवान क्षत्रिय कुल में आविर्भाव हुए और उनके 16,108 रानियां थी और एक एक रानी की 10-10 पुत्र थे, तो हम एक ही परिवार और अनेक परिवार थे ना। वसुदेव के 9 पत्नियां थी, उसके अनुसार उसी के जैसे कितने क्षत्रिय कितने राजाओं का वर्णन होते हैं भागवत में, और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इनके कितने संतान थे जो क्षत्रिय कुल के थे और धनुर्वेद और वेद दोनों साथ में अध्ययन करते। सांदीपनि तो एक ब्राह्मण थे, काशी के ब्राह्मण थे, अनेक ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान सिखाते थे। यही परिस्थिति का पुनरुत्थान ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ये मेरा प्रस्ताव है, ठीक ढंग से होना चाहिए। अगर विचार विमर्श करेंगे, आशा है कि भविष्य में होंगे, आशा है। अभी तक हम उस प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं वैदिक समाज ठीक ढंग से लाया नहीं, तो सब क्षत्रिय नहीं बनेगा, वो तो निश्चित है, सब ब्राह्मण भी नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा शूद्र तो ही रहेंगे। किं करह आई नंद तुनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो। किंकर हिंदी शब्द हो गया सेवक, और संस्कृत मूल है किम करोति, मैं क्या करूं। शूद्र तो स्वामी से, उनके स्वामी से पूछते हैं मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा काम क्या है, बुद्धि नहीं है, इसलिए कोई बताने वाला होना चाहिए। श्रम के लिए तैयार है और श्रम से ही सिद्ध भी बन सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शक होना चाहिए। सही मार्गदर्शन कहां से आ रहे हैं? हम कहते हैं वैदिक ग्रंथों से। अगर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके करके आधुनिक समाज का पुष्टि हमें आगे देना चाहते हैं तो फिर क्या सीखा है हम, क्या शिक्षण मिला? हम भी उन्हीं की तरह हैं, काली वेशभूषा अलग है, काली वेशभूषा वो भी एक चीज है, वो भी खत्म हो गया। अरे हम आया 40 साल पहले तो धोती पहनने वाला आदब था, काका के बचपन में सब धोती पहनते थे। हम त्रिवेंद्रम एक बार गया केरल, कोई पैंट शर्ट दिखाई नहीं देते थे, 30 साल पहले की बात, बाद में गया नहीं, पैंट शर्ट दिखाई नहीं देते थे त्रिवेंद्रम। सब लोग लुंगी, यहां लुंगी बोलते वो धोती बोलते हैं, सब पहनते थे। अभी निषेध है, एक दिन थप्पड़ खिलाएंगे धोती वालों को, मूर्ख लोग तुम ये कपड़ा क्यों पहनते हैं? अभी भी गांव गांव में पहनते हैं, गांव गांव में आधा जनसंख्या ग्रामीण अभी भी गांव में रहते हैं, लेकिन वहां से भी जा रहे हैं। ये तो एक ही चीज है, बैठ के खाना चले जा रहे हैं, हम लोग खड़ा होके खाना है भगवा कपड़ा पहन के। सन्यासी वो केवल खड़ा होके खाते, घूम घूम के खाते हैं। विदेशी है समझते नहीं, हिंदुस्तान में दे रहा सीखने के लिए, लेकिन हिंदुस्तानी भी छोड़ दिया। प्रभुपाद जी महाराज सूरत आए थे, चित्र है अभी भी, सब टेबल में बैठ के खा रहे थे। दक्षिण में ही वो नहीं चलता था, गुजरात में चलता था, अभी गुजरात में बैठ के खाना खून मूर्ख करते हैं, बैठ के खाते हैं। शादी में सब खड़े होके खाना पड़ेगा, सब अगर खड़ा होके नहीं खाएंगे दंडनीय अपराध है, ऐसे वातावरण हो गया, ऐसे वातावरण हो गया। दक्षिण में हमको पांव धो के बैठ के खाना था, सबको बाल्टी और लोटा देते थे पांव धोने के लिए 40 साल पहले, और अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं सबको, मालूम नहीं। द्विपाद पशु बोलते थे प्रभुपाद जी महाराज, तो विदेशी लोगों के बारे में बोलते थे। भारत में ये सब विवेक था कि ये अनुचित है, ये पशु की तरह व्यवहार है, तो हम इस पर याद करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे दुर्गति हो गया। कलयुग का प्रभाव बोलते हैं, लेकिन 50 साल पहले कलयुग चलते थे, गांधी जी के काल में कितना 70-75 सब लोग धोती पहनते थे, सब बैठ के खाते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे। कोई कोई वर्ग तो अनादि काल से सब कुछ खा रहे हैं, ये निश्चित है, कत्ल खाना नहीं था। प्रभुपाद मांसाहार का इतना विरोध नहीं किया जितना कत्ल खाना का विरोध किया, और कौन बंद करेंगे? इसलिए थोड़ा क्षत्रिय का काम है समाज का नियमन। आजकल के समाज का नियमन करने वाले लोग, उनका नाम भले हिंदू हो लेकिन कत्ल खाना समाप्त नहीं कर रहे हैं। आशा है समाप्त हो जाएंगे, आशा है। पशु का कत्ल निम्न के निम्न लोग तो सैकड़ों सैकड़ों, ये क्या बोलते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, ये तो अनादि काल से चलते, निम्न की गिनती है, पशु तुल्य मानव जैसे ही गिनती नहीं थे, भले मानव शरीर प्राप्त करते थे, लेकिन जो बुद्धिमान लोग थे कभी ये। अभी बंगाल में सब ब्राह्मण खाते हैं। एक लड़का है उनका नाम है भट्टाचार्य, भक्त बन गया कलकत्ता में, अभी यूएसए में नौकरी में लग गया। तो इंटरनेट में हमारा संपर्क, दीनबंधु प्रभु गया यूएसए, तो सब जगह दीनबंधु प्रभु के साथ, ये तीन चार महीने पहले की बात है, उनके साथ दिया। तो वो बोला मैं कलकत्ता आ रहा हूं, तो मैंने बोला आपके घर में खाना असंभव होगा। उसने जवाब दिया सही बात है, मैं अकेला हूं, अलग बर्तन में पका के खाता हूं, पूरे परिवार मछली खाते हैं, ब्राह्मण परिवार। और ये एक का कहानी नहीं है, अनेक। और आपके भगवान जगन्नाथ सब जानते क्या परिस्थिति है, क्या करे क्या करे। यही तो कलयुग का प्रभाव। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आशा है कि कोई सुप्त नहीं हुआ, कोई सोया नहीं।